चौबीस जी 27 जनवरी सन 1967 दूसरे पेज के मध्याह्न में बात चल रही थी। सभी बच्चे नंबरवार हैं, जिनको धारणा होती है कोई तो बिल्कुल नहीं समझा सकते, क्योंकि खुद ही धारणा नहीं होती तो दूसरों को भी समझा नहीं सकते। कोई कहते हैं हम मित्र संबंधियों आदि को समझाते हैं, मित्र संबंधियों आदि को समझाना वो भी तो अल्प ज्ञान हो गया ना, और उनको प्रगति आदि में क्यों नहीं समझाते हैं? सिर्फ मित्र संबंधियों आदि को ही क्यों समझाते हैं? अल्प ज्ञान क्यों हो गया? क्यों अज्ञान हो गया? क्योंकि जो रथ के संबंधी है, स्वरथ के, वो उनका कल्याण तो बुद्धि में रहता है लेकिन विश्व कल्याण बुद्धि में
नहीं रहता है।
तो बाबा पूछते हैं प्रदर्शनी आदि में क्यों नहीं समझाते, अपने संबंधियों आदि को ही क्यों समझाते हैं? पूरी धारणा नहीं होती है। इस बात की धारणा ये ज्ञान विश्व कल्याण का ज्ञान है, ये धारणा उनकी बुद्धि में नहीं होती। अपने को मोमिया मिट्टू तो नहीं समझना चाहिए। सर्विस का शौक है तो जो अच्छी रीति समझाते हैं उनको ला करके सुनना चाहिए, प्रैक्टिस ऐसी करनी चाहिए। बाप आए हैं उच्च पद प्राप्त कराने के लिए। उच्च पद क्या है? विश्व का मालिक बनना, लेकिन किसी स्टेट का मालिक बनना
नहीं।
किसी देश विशेष का मालिक बनना नहीं। बाप तो ऊंचे से ऊंचा बाप है और ऊंचे से ऊंचा लक्ष्य बच्चों को देता है। तो पुरुषार्थ करना चाहिए, परंतु तकदीर में नहीं है तो बाप जो श्रीमत देते हैं उसको मानते नहीं। क्या बुद्धि सीमा में अटक जाती है? बाप तो असीम ज्ञान देते हैं, सारे विश्व का कल्याण का ज्ञान देते हैं, लेकिन उनकी बुद्धि में सीमाएं खिंच जाती हैं। श्रीमत को नहीं मानते हैं फिर पदवी भ्रष्ट हो जाता है। राजधानी तो स्थापन हो रही है ना, कौन सी राजधानी है? अरे सारे विश्व को कंट्रोल करने वाली राजधानी स्थापन हो रही है या कोई देश विदेश की राजधानी स्थापन हो रही है?
सारे विश्व को कंट्रोल करने वाली
कोई देश विशेष की राजधानी स्थापन नहीं हो रही है। ऐसी राजधानी स्थापन हो रही है जिस राजधानी में, जिस शहर में सारी दुनिया के सब धर्म वालों ने राज किया और उसको हिलाया है, उस गद्दी को हिलाया है। वो जो गद्दी हिलती रही है विधर्मियों के द्वारा, उस गद्दी को अभी बाप आकर के स्थिरियम कर रहे हैं, स्थापना कर रहे हैं, स्थाई कर रहे हैं। तो उस राजधानी में तो हर प्रकार के चाहिए ना, जैसे सूर्यवंशी ही चाहिए क्या?
हर प्रकार का चाहिए।
इस्लाम वंशी ही चाहिए क्या या चंद्रवंशी ही चाहिए क्या? सब धर्म के चाहिए। तब कहेंगे विश्व की बात सही?
नहीं
नहीं
सारे विश्व धर्मों की चुनी हुई आत्माएं, श्रेष्ठ आत्माएं वहाँ हिस्सा अपना ले तभी तो कही जाएगी विश्व की बात सही। तो हर प्रकार की चाहिए ड्रामा प्लेन अनुसार राजा ही स्थापन हो रही है। जो नीचे नीचे धर्मों से आए होंगे तो उतनी चलन उनकी अच्छी नहीं होगी। राजधानी में तो आ जाएंगे लेकिन दास दासी बदल सेंटर्स पर जो ब्राह्मणी है वो भी समझ सकती है। कोई अच्छी प्रजा बनने वाला है कोई कम प्रजा बनने वाला है। फर्स्ट क्लास प्रजा भी होती है अच्छे अच्छे साहूकार होते हैं राजा को भी राजा ही चलाने में मदद करते हैं। सेकेंड क्लास भी होते हैं थर्ड क्लास प्रजा भी होती है। जो कम बनते हैं वो ही फिर पुजारी बनते हैं। राजा रानी का मतलब ऊंच है ना। फिर भाम भाम मार्ग में आते हैं तो भी राजा अथवा बड़े बड़े साहूकार तो होते हैं ना। ऐसे नहीं कि 21 जन्म की राजाई लेकर के रह जाते हैं। 21 जन्म की राजाई के आधार पर 63 जन्मों का हिसाब भी बन जाता है। जिनके तीव्र पुरुषार्थ करने के संस्कार पड़ते हैं वो 63 जन्म में भी तीव्र पुरुषार्थी होते हैं। 63 जन्म में यहाँ का पुरुषार्थ वहाँ नहीं जाएगा लेकिन क्या जाएगा यहाँ की जो पुरुषार्थ करने के संस्कार है तीव्रता की वो तीव्र पुरुषार्थ के संस्कार वहाँ जाएंगे। यहाँ लिबेलेपन के संस्कार होंगे तो वहाँ भी जाएंगे। यहाँ अवज्ञा करने के संस्कार होंगे तो वहाँ भी राजाओं की अवज्ञा करेंगे। महाराजा की अवज्ञा करेंगे तो महाराजा तो नीचे गिरा देगा। जगन्नाथ के मंदिर में सबको ताज दिखाया है। क्या श्रीनाथ के मंदिर की बात नहीं बताई सबको ताज दिखाया है। सबको जिम्मेवारी का ताज है। वहाँ स्थूल ताज होगा और यहाँ जिम्मेवारी का ताज। तो जगन्नाथ के मंदिर में सबको जिम्मेवारी का ताज है। जो जितनी जिम्मेवारी उठाता है वो उतना बड़ा पद पाता है। प्रजा को तो ताज नहीं होगा। ताज वाले राजाएं भी फिर विकार में दिखाते हैं। बहुत अच्छा पॉइंट। क्या
ताज वाले राजा विकार की खाते
कि जगन्नाथ के मंदिर में सबको ताज दिखाया। श्रीनाथ के मंदिर में सबको ताज नहीं दिखाया है। सुख संपत्ति तो जो विकारी राजाएं होते हैं उनको भी बहुत होगी। सुख जास्ती होता है ना। संपत्ति होगी तो सुख होगा। संपत्ति ही नहीं होगी तो सुख कहाँ से होगा। सतयुग के आखिरी नारायण उसको संपत्ति होती है, है? उसको संपत्ति नहीं होती क्योंकि शूटिंग पीरियड में बुलछर्रे उड़ाता रहा हवाई राजों में घूमता रहा। जो मनन चिंतन मंथन ज्ञान का करना था मुरलियों का वो मुरलियों का मनन चिंतन मंथन नहीं किया और राम वाली आत्मा ने मनन चिंतन मंथन किया। तो जिसने मनन चिंतन मंथन किया यहाँ के ज्ञान रतन वहाँ के स्थूल रतन राम वाली आत्मा राम बाप के रूप में प्रजापिता के रूप में सन 76 में क्यों प्रत्यक्ष हो गई? बाप का प्रत्यक्षता वर्ष जो मनाया गया उसमें बाप के रूप में वो आत्मा पहले नंबर में क्यों प्रत्यक्ष हो गई? क्योंकि
मनन चिंतन
ज्ञान का मनन चिंतन मंथन करने का अपन नंबर साथ करके दिखाया तो साहूकार बन गई ज्ञान रत्नों का। इतना बड़ा ज्ञान रत्नों का साहूकार बन जाती है कि आखिरी जन्म में जो सतयुग में राजा बन महाराजा बनता है उसकी सारी राजाई उसकी साहूकारी में डूब जाती। जो लोन लेता है और लोन लेकर के राजाई चलाता है उस राजाई में सारा
डूब जाता है,
उस राजाई में उसकी सारी धन संपत्ति वो सारी धन संपत्ति जो साहूकारी की है राम की उसमें उसकी सारी राजाई डूब जाती। तो बताया कि वो 21 जन्म का जो हिसाब है वो यहाँ द्वापर और त्रेता में कलयुग में भी चलता है। क्या चलेगा? जो आखिरी नारायण होगा वो आर्य समाजी वो नारायण होगा। आर्य समाजी कलयुग के अंत में फिर राजा ही प्राप्त करते हैं, उनको कहते हैं कौरव कांग्रेस गवर्नमेंट। और कौरव कांग्रेस गवर्नमेंट विदेशियों से लोन लेती है और लोन लेकर के भारत के ऊपर ढेर सारा जो कर्जा करता है उससे विदेशियों के दबाव में रह करके चलना पड़ता है। राजाई का वो नशा नहीं रहता जो राजाओं को, आज राजा बनते हैं कल तार
निकल जाता
है, उभर जाता है। तो संपत्ति से सुख जाति होता है ना, हीरे के महल और चांदी के महलों में फर्क तो होता है ना। हीरे माना
हीरे
जैसी श्रेष्ठ आत्माएं हीरो पार्ट बजाने वाली आत्माएं और फिर चांदी जैसी पार्ट बजाने वाली आत्माएं। चांदी तो सोने से भी कम मूल्यवान होता है, सतयुग में सोने जैसी आत्माएं नीचे उतरेगी। और त्रेता में चांदी जैसी आत्माएं निकलेंगी, ऊपर से आएंगी चांदी जैसी आत्माएं, उनकी क्वालिटी कम होगी। और जो ऊपर से चांदी जैसी आत्माएं उतरेंगी 8 करोड़ की संख्या वाली, वो 2 करोड़ के सतयुग के जो सोने जैसे हैं उनमें मिक्स हो जाएंगे। तो सोने में ताई की खाद पड़ गई, चांदी की खाद ढेर सारी पड़ गई। तो जो सोने जैसी आत्माएं थी उनका भी मूल्य रंग के रंग से कम होता जाता है। तो बाप बच्चों को कहेंगे अभी तुम अच्छा पुरुषार्थ करो या कोई के संग के रंग में मत आओ, कोई से प्रभावित मत हो। एक बाप
दूसरा हो,
एक बाप की सुनना है और किसी की बात नहीं सुननी। औरों का भी अगर ज्ञान सुनते रहे तो व्यभिचारी ज्ञान हो जाए, और अगर ज्ञान व्यभिचारी हो गया तो जो धन संपत्ति मिलेगी ना कृष्ण जन्मों में वो भी काली कमाई की मिलेगी, ब्लैक मार्केटिंग करनी पड़ेगी। जैसे अभी तो साहूकार बन करके ऊंचा करके भगवान बाप से डायरेक्ट सन्मुख सुन करके ज्ञान लेते हो, अव्वल नंबर का ज्ञान तुम लेते हो, और जो सन्मुख नहीं रहते वो भी ब्राह्मण है। ब्रह्मा की औलाद तो है लेकिन सन्मुख आने का साहस नहीं करते, तो वो ब्लैक मार्केटिंग करते, चोरी चोरी छुपे छुपे कैसे थे बीसीडी डीवीडी सुनते रहते, लिटरेचर पढ़ते रहते, दरवाजा बंद कर लेंगे और एक दो जिनका दिल लगा हुआ है उनमें बैठ करके पढ़ेंगे, तो चोर बाजार एक हुई ना, चोर बाजार ही करनी पड़ती, तो फर्क तो हो गया ना। तो बाप बच्चों को कहेंगे अभी अच्छा पोशाक करके उच्च पद पाओ, राजाओं को सुख जाति होता है, क्या आधा में जाम आधा में रैयत, सत्युग में भी ऐसे होता है और द्वापर कलयुग में भी ऐसे होता है, भले कहा जाता है यथा राजा रानी तथा प्रजा, फिर भी मर्तबा तो ऊंच होता है ना, मर्तबा तो नंबर वन होता ही है। बाप सदैव कहते हैं पुरुषार्थ करते रहो, क्या करते रहो
पुरुषार्थ करते रहो,
पुरुषार्थ माना
पुरुषार्थ,
पुरुष माने आत्मा, पूर्व मानव पूरी
शरीर
रूपी पूरी और उसमें आराम करने वाली आत्मा, उसको कहते हैं पुरुष, पूजा माना से सोने वाली आराम करने वाली, तो जो आत्मा इस शरीर रूपी पूरी में पुरुष बनकर रह रही है वो पुरुषार्थी जब तक नहीं बनेगी, क्या बने पुरुष के अर्थकारी करने वाली, पुरुष माने आत्मा, आत्मा के अर्थकारी करने वाली, कोई स्वार्थ के लिए कार्य करते हैं क्या, सुबह से लेकर के शाम तक धंधा धोरी करते हैं, 11 बजे 12 बजे दुकान बंद करते हैं, तो पाई के लिए करते हैं, रस के पोषण के लिए करते हैं ना, या कि आत्मा के पोषण के लिए करते हैं, अगर उनको आत्मा के पोषण की याद हो तो फिर 12 बजे तक दुकान क्यों चला, फिर तो उनकी बुद्धि में रहेगा अमृत मेला तो जल्दी जल्दी झटपट 7 बजे दुकान बंद करे और फटाक से जल्दी जाके घर में सो जाए और सवेरे को अमृत मेला जो थोक पुरुषार्थ है वो जरूर करे, लेकिन उनकी बुद्धि धन कमाने में बिना की धन कमाने में लगी हुई, तो बाबा कहते हैं जिनकी बुद्धि विनाशी धन कमाने में लगी हुई है उनकी किस्मत फूटी हुई है। तो बाप कहते हैं सदैव कुछ अर्थ करते रहो, क्या आत्मा के अर्थ करो, आत्मा के अर्थ जो काम किया जाता है उसको कहा जाता है पुरुषार्थ, और देह के अर्थ जो किया जाता है
वो
स्वार्थ
के लिए।
इस बात की गहराई को भी समझना है, क्या स्वार्थ ही नहीं बनना है, जो स्वार्थी होते हैं वो विश्व के मास्टर नहीं बन सकते, पुरुषार्थी होंगे
तो
विश्व की वार्ता ही मिल सकती है। तो सदैव कहते हैं पुरुषार्थ करते रहो, सुस्त मत बनो, पुरुषार्थ करने में सुस्त
मत बनो,
पुरुषार्थ ही समझा, पुरुषार्थ से ही समझा जाता है, ड्रामा प्लेन अनुसार इनकी सदगति इतनी होगी और इसी ही प्रकार होनी है, ये पुरुषार्थ से आंका जा सकता है, अपनी सदगति के लिए फिर श्रीमत पर चलना पड़े, क्या सुनोगर बाप ने क्या किया, श्रीमत से सदगति और मनुष्य मत से
दुर्गति
दुर्गति। ایک ایک قدم پر دیکھنا ہے. جو بھی قدم ہم اٹھائیں کام کرنے کے لیے اس میں یہ دیکھنا ہے یہ قدم ہمارا کام کرنے کے لیے جو قدم اٹھا رہے ہیں وہ سیمت پر ہے, سیمت کے وپریت تو نہیں ہے. اگر سیمت کے وپریت ہے تو وہ کام نہیں کرنا, وہ قدم نہیں اٹھانا. باپ کے قدم کے اوپر قدم رکھ کر کے چل رہے ہیں, باپ جو راستہ بتاتے ہیں
اس پر چلنا,
اس راستے پر چلنے سے کبھی بھی گھاٹا نہیں ہو سکتا. اچھی اچھی جو برہمنیا ہیں, اچھی اچھی جو برہمنیا ہیں ان کی مت پر چلنا پڑے. ٹیچر کی مت پر اسٹوڈینٹ اگر نہ چلے تو وہ اسٹوڈینٹ کوئی کام کرے, نہ چلنا ہی مانا ناستک بنا. یہاں بھی براہمن ہی مقرر کی ہوئی ہے. نمبر بار کو ساتھ سنسار تو سب ہوتی ہے, کون براہمن برہما کماری بھی نمبر بار ہے. کوئی تو راجا کماری بنے گی اور کوئی پرجا کماری بنے گی. اگر سیمت ریلے کرنے میں اپنی منمت مکس کرتی ہے تو پرجا کماری بنے گی. اور سیمت جیسی ہے ویسے سیمت کو ویسا ہی ریلے کرتی ہے تو ضرور راجا کماری بنے گی. سیمت میں منمت اور کوئی منشی کی مت اگر مکس کیا تو ان کا پدبرت ضرور ہو جائے گا. چاہے بولیوں میں پریورتن کرے اور چاہے بابا کی کیسٹ میں کاٹ پیٹ کر کے کرے. بابا کی کیسٹ بھی کاٹ پیٹ کی گئی ہے. ابھی جو برہما بابا کی کیسٹ ہیں جن کے نام جو مل رہے ہیں ان میں سے ایڈوانس کے سارے پوائنٹ کٹ کر کے ایڈ کر کے اور تیار کر کے اب دے دیا. بابا کی اوریجنل واڑی
نہیں
مل رہی. تو بولا نمبر بار کو ساتھ انسار تو سبھی برہمن ہیں. تو جو اچھی برہمنی ہے ان کی سکھائی پر چلنا چاہیے. اگر کوئی کہتے ہم یہ نہیں سیکھیں گے تو پھر کیا سیکھیں گے؟ ناستک بنتے ہو تو جاؤ اپنے گھر. ناستک مانے جن کو اونچ سے اونچ باپ کے اوپر آستھا نہیں ہو, مانا جو باپ کو نہیں جانتا ہے وہ ہے ناستک, اور جو باپ کو جانتا ہے وہ ہے آستھا. اچھا تو برہما سے پیدائش ہوئے, برہما مکھ سے پیدائش ہوئی جتنے بھی برہما کمار کماری ہیں لاکھوں کی تعداد میں دنیا میں, ان میں کون سے ایسے ہیں جو مت پر چلتے ہیں اور باپ کو جانتے ہیں؟ جانیں گے تبھی تو مت پر چلیں گے. کس کی مت پر؟ اونچ سے اونچ باپ کی مت پر. جانیں گے تو اونچی سے اونچی باپ کی مت پر چلیں گے, اور جانیں گے ہی نہیں
چلیں گے
تو مت پر چلیں گے بھی نہیں. جانیں گے اس کا مطلب جانی تو آتما مجھے ایک پریے, اور جاننے کی اچھا نہیں. ارے ہوگا کوئی باپا, ہم تو جس راستے پر چل رہے ہیں اسے ایک راستے پر ہی چلیں گے. ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں کہ برہما کا گیان ہے کہ شیو بابا کا گیان ہے, کہ گیتا کا بھگوان کرشن ہے کہ شیو بابا ہے. شیو بابا کو یاد کرنا تھا. تو مت پر اچھا ہو کر چلنا چاہیے. جو کوئی بھی سمجھے یہ تو بہت اچھا سمجھتے ہیں, کتنا اچھا بولتے ہیں, اس میں بھی بہت اچھے فیل ہو جاتے ہیں. اچھے اچھے بچے جن کو بابا سیکنڈ تھرڈ گریڈ میں گنتے ہیں, کتنے تھے آسمان میں آ کر کے مر گئے, اور کتنے ہی ابھی مرنے والے ہیں. ایسے سمجھو جیسے کہ مرے ہی پڑے. کن کی بات کی؟ جو باپ کو جانتے ہی نہیں اور سریمت کو مانتے ہی نہیں. بابا جانتے ہیں کہ دیہ آسمان بہتوں میں ہے, آتما جیتے جی مر کر کے ایک کی بن کر کے رہے. کیا
ایک کی بن کر رہے؟
جیتے جی مرے
اور ایک کی بن,
اور جیتے جی ایسی مرے کہ ایک کی بن کر کے رہے. ایک کی بن کر کے رہے مانا بندو کی بن کر رہے, بندو کی بن کر رہنے کی بات ہی نہیں ہے. بندی بندی آتما تو انیک ہے, پیڑ پشو پکشی پتنگے سارے بندو ہے, پھر کون سی ایک بندی کی بس پر چلے؟ بندی نہیں, بندی ساکار میں آ کر کے مقرر رتھ پکڑتی, اس مقرر رتھ کی مت پر چلے اور اس کا بن کر کے رہے. ایک کا بنے تو پھر اور ان کو کیوں بات کرنا چاہیے؟ جس کو آنکھوں سے دیکھیں گے اس کی یاد آئے گی, جس کا سنگ کریں گے
یاد
آئے گی. تو ایک کا سنگ کرنا چاہیے یا انیکوں کو سنگ کرنا چاہیے؟
ایک کا سنگ کرنا چاہیے.
ایک کا سنگ کرنا چاہیے. دیہی ابھیمانی بننے کی بڑی منزل ہے, ایک کے سوائے اور کوئی کو بھی یاد نہ کرے. اب جس کے سمپرک میں آتے ہیں وہ یاد تو آتے ہیں نا, جس سے باتیں کریں گے ریزرنٹ کے تو ان کی یاد نہیں آئے گی. یہ مغوی تو اندری ہے, یہ دیویا اندری نہیں ہے کیا؟ یہ کان اندری نہیں ہے کیا؟ جن کا سنگ جس کے ساتھ کریں گے, جن کی باتیں سنیں گے تو وہ یاد نہیں آئیں گے. بابا کہتے ہیں کسی کی جرمول جرمول مت سنو. ایک کے سوا اور کوئی تو یاد نہ کرے, سب کچھ بھول جانا ہے. ہم ننگے آئے تھے اور ننگے جانا تھا, اور کچھ بھی یاد نہیں رہنا چاہیے. یہ بڑی بھاری منزل ہے, وہاں آتمائیں تو ہیں ہی نہیں. کہاں کہاں آتمائیں نہیں ہیں؟ ارے آتمائیں کہاں نہیں ہیں؟ نہیں جو بسم ہونے والی کلیوں کی دنیا ہے, وہاں کوئی آتما ہی نہیں ہے, سب دے ابھیمانی ہے. سارے دے ابھیمانی سانڈ ہے, چاہے وہ دنیا ہو اور چاہے براہمنوں کی دنیا ہو. آتمک استھتی والے
نہیں,
اگر آتمک استھتی والے ہوتے تو سمجھتے ہم سب آتما آتما بھائی بھائی ایک باپ کی سنتان ہے, بھائی بھائی کے ساتھ کیسے ویوہار کرنا چاہیے یہ بدھی میں بیٹھنا چاہیے. اگر نہیں بیٹھتا ہے تو وہ آتما آتما بھائی بھائی نہیں ہے, اپن کو آتما سمجھتے ہی نہیں. ایسے گیت بنتے ہیں, ہم ہیں آتما تم ہو آتما آپس میں بھائی بھائی. اب گیت گانے سے تو آتما نہیں بنے, اس کے لیے تو پرشاد کرنا پڑے, بندی آتما کو یاد کرنا پڑے, اسٹار آتما کو
یاد کرنا پڑے,
یاد کرنے کی پریکٹس کرنی پڑے. دیہی بن پھر یہاں آ کر کے دیہ دھارن کرنی. کیا ستائیس جنوری سن 67 کی وانی کا تیسرا دن, کیا 27 जनवरी 67 की वाणी का तीसरा दिन पहले आत्मा बनू फिर यहाँ सत्संग में बैठ करके देह धारण करके बाबा की वाणी सुन। अब फिर यहाँ इस देह में होते हुए अपने को नंगा समझना है, ये बड़ी भारी मेहनत है। अपन को आत्मा समझ कर्मातीत अवस्था में रहना है। क्या कर्मातीत अवस्था में रहेंगे तब कहेंगे हम परम धाम वासी हैं। यहाँ मैंने कहा अरे परम धाम को तुम बच्चे सृष्टि पर उतार लेंगे तो पांव उतारेंगे, ये साकार दृष्टि हो सारी जगह हर जगह
नहीं।
जो आबू अब्बा का घर है जहाँ तपस्या का प्रभाव है वहाँ सब जो आत्म की स्थिति को धारण करने में प्रैक्टिस बच्चे होंगे अभ्यासी बच्चे होंगे उनके लिए एक ही ट्रेन चलेगी और उस एक ट्रेन में बैठ करके वो बाप के पास पहुंच जाएंगे और यहाँ आकर के आत्मा अपन को समझ कर्मातीत अवस्था में रहेंगे कहा रहेंगे माउंट आबू में साकार परम धाम की स्टेज बन जाएगी। रहना है अभी रह नहीं रहे हैं है ना, ऐसा टाइम आएगा यहाँ यहाँ मैंने कहा माउंट आबू में एक शरीर छोड़ दूसरा लेना है। क्या ये जो शरीर है जो तामसी शरीर है वो योग बल से इतना पावन बन जाएगा कि जैसे सर्प बड़े आराम से कैल्शियम त्याग देता है ऐसे ये पांच तत्वों की बनी हुई तामसी खल छूट जाएगी और नई खल
धारण करेगी
मिल जाएगी माने कंचन काया
बनेगी।
सर्प को भी अकल है ये सर्प का ही मिसाल क्यों दिया गया है? अरे हाथी घोड़े का मिसाल दे रहे थे हाथी घोड़े का मिसाल नहीं दिया सर्प का मिसाल दिया सो क्यों दिया सर्पकारी भी साल है खल बदलने में क्यों दिया जाता है जो शिव बाप है उसका जो साकार विग्रह है उसमें सर्प ही लिपटे रहते जैसे बंदर बहुत विकारी होता है ना ऐसे सर्प भी बहुत कामी होता है। तो वो सर्प लिपटे रहे तो भुजंग और चंदन में व्यापक नहीं शिव बाबा है वो तो चंदन है वो कितने भी भुजंग लिपटे रहे उन भुजंगों को शिव बाबा का संग रंग संग का रंग लगेगा क्या उन भुजंगों को शिव नहीं लगेगा लेकिन सर्प जो संग का रंग है वो शिव बाबा को नहीं लगेगा। तो वो स्थूल सर्पों की बात नहीं है और से सर्पों की बात है रूमन जो सर्प है वो शिव बाबा के अंग संग रहते हैं क्योंकि पहचानते जो पहचानेंगे जो अंग संग रहेंगे पहचानेंगे ही नहीं तो अंग संग कैसे रहेंगे। पांच सर्प दिखाए जाते हैं कमर में दिखाया जाता है हाथों में दिखाया जाता है बाहों में गले में दिखाया जाता है और सर पर भी
दिखाते
कमर में दिखाया जाता है काम विकार की निशानी, आजू बाजू में दिखाया जाता है क्रोध और लोभ की निशानी, और गले में दिखाया जाता है मोह की निशानी, और रूप में दिखाया जाता है तो मैं भगवान से ऐसे जो अहंकारी सर्प है लेकिन भगवान से लिपट के रहते हैं वो उनकी भी सदगति हो जाती है। तो सर्प का मिसाल देते हैं, पुरानी छल छोड़ देता है छल, तुमको भी देह मन से कितना निकालने की पुरुषार्थ दिखाते हैं। मूलवत में तो है ही देह मन, देही अभिमान, यहाँ देह में होते अपन को आत्मा समझना है, अभी हमको नंगा वापस जाना है, क्या
नंगा वापस
कहा जाना है,
परमधाम
ऊपर जाना है कि पहले नीचे जाना है, पहले जो नीचे परमधाम बनेगा वहाँ से नंगा होके जाना है, यहाँ की धन संपत्ति वहां काम नहीं आएगी, क्या जो आत्म की स्टेज में होंगे वो ही वहाँ पहुँचेंगे, और अगर मान मर्तबा आया अंदर मेरे इतने मेहरबानियाँ अटारियाँ हैं, इतनी कारें हैं,
इतने बंगले
है, इतने कारखाने हैं, और ये अहंकार अगर आया तो वहाँ जा नहीं सकेंगे, इसे नंगे होने में ही मेहनत, मेरा तो एक शिव बाबा
दूसरा
देह अभिमान टूट जाना है, बहुत है जो देह अभिमान में रहते पक्के हो गए, कितनी भारी परीक्षा है, भगवान को आकर के पढ़ाना पड़ता है, ऐसे कोई कह न सके कि देह के सब नाते छोड़ दो, क्या कहे देह के सब नाते छोड़ दो, ऐसे कोई कह नहीं सकता, सब नाते छोड़ करके मेरे बनो, क्या
सब नाते छोड़कर मेरे
सन्यासी कहेंगे,
नहीं कहेंगे,
क्यों नहीं कहेंगे, अगर सब छोड़ छाड़ के सन्यासी जी के पास बैठ जाए जाके तो सन्यासी जी की मुसीबत आ जाएगी, बरात को काम खिलाएंगे, ये तो हमारी मठपंथ की भी सारी चट कर जाएगी, तो वो कभी कह
नहीं
सके कि अपने मित्र संबंधियों को छोड़ करके और मेरे बन जाओ, अपन को निराकार समझो, कोई भी चीज का भान नहीं रहना चाहिए, यहाँ माया कितनी फंसाती है, व्यक्तियों में फंसाती है और वस्तुओं में भी फंसाती है, एक तो की देह में बहुत फंसते हैं, सबसे ज्यादा किसमें फंसते हैं, एक तो की देह में बहुत फंसते हैं, इसलिए बाबा कभी इनका फोटो भी नहीं रखने देते, इनका इनका क्यों कहा, इसका क्यों नहीं कहा, दोनों का, ये दोनों जो है दोनों कौन, राम और कृष्ण का जो अंतिम चोला है उसका फोटो बाबा नहीं रखने देते, किसी की बात हो तो फेंक देना, क्या वो तथा करते तो ब्राह्मण तो रखते हैं, تو بابا ان کا فوٹو بھی نہیں دیتے رکھنے دیتے ہیں کیونکہ تم کو ان کو تو یاد کرنا ہی نہیں ہے. یاد کس کو کرنا ہے؟ شیو بابا کو یاد کرنا ہے. کبھی کہا شنکر بابا کو یاد کرنا ہے؟ برہما کو یاد کرنا ہے, وشنو کو یاد کرنا ہے, شنکر کو یاد کرنا ہے, ایسے کبھی کہا؟ مرلی میں تو بولا ہے کوئی مما کی مرید, کوئی بابا کی مرید, شیو بابا کو کوئی جانتے ہی نہیں. تو بولا اس لیے بابا کب ان کا فوٹو نہیں رکھنے دیتے ہیں کیونکہ تم کو ان کو تو یاد کرنا ہی نہیں ہے. کوئی کوئی جاتی آرگیو کرتے ہیں, پیچھے ہی پڑ جاتے ہیں, ہمیں فوٹو دو. تو بابا سمجھ جاتے ہیں یہ بھگت ہے. تو اب اس براہمن پریوار جو لاکھوں کی تعداد میں براہمن ہے, چاہے بیسک میں چاہے ایڈوانس میں, ان میں بھگت کتنے ہوں گے؟ کتنے کی تعداد میں بھگت ہوں گے؟ ایڈوانس میں بھی ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہمیں بابا کا فوٹو چاہیے. ترمورتی میں سمجھانے کے لیے بابا کا فوٹو دینے کے لیے منع نہیں کیا, سمجھانے کے لیے ترمورتی میں بھل ہے بابا کا فوٹو رکھو, لیکن الگ سے فوٹو رکھنے کی درکار نہیں ہے. ہاں وہ بھی ترمورتی ہی تو ہے. بابا کہتے ہیں یہ اچھی بات نہیں ہے. کیا؟ فوٹو رکھنا, مما کا فوٹو رکھنا یا بابا کا فوٹو رکھنا یا کوئی بھی برہما کمار کماری کا فوٹو رکھنا یہ اچھی بات نہیں ہے. فوٹو کس لیے رکھا جاتا ہے؟ مندروں میں مورتیاں رکھی جاتی ہیں, کس لیے رکھی جاتی ہیں؟ درشن کرنے والوں کو آنکھوں سے دیکھ لیں گے تو جڑ مورتیوں کی یاد یاد آئے گی. تو بابا منع کرتے ہیں. کیا
منع کرتے
ہیں؟ یہ جو پانچ تختوں کا چولہا ہے یہ پوجنی ہے یا نہیں پوجنی ہے؟ یہ پوجنی نہیں ہے. جب تک پانچ تتو بھی ستو پردھان نہ بنے, کنچن کایا جب تک نہ بنے, تب تک چولہے کی پوجا نہیں ہونی چاہیے. اس میں بہت محنت کی بات ہے. ایک بات کو یاد کر لوں, مایا اچھے اچھے بچوں کو بھی لٹکاتی رہتی, ایک دم رام روپ میں لٹکائے دیتی ہے. کوئی استری میں لاگت لگ جاتی, کوئی استری کا پرش کے شریر میں لاگ لگ جاتی ہے, لاگت لگ جاتی, کوئی استری کی استری میں لاگت لگ جاتی. ایسے بھی ہوتا ہے, یہ لاگت بہت خراب ہے. جن کی جس سے لاگت لگتی ہے پھر انہیں کی یاد بدھی میں آتی رہتی ہے. اور شیو بابا شیو بابا بھولتا جاتا ہے. ایسے ہی بہتر بن پڑتی ہے یہ راضی سے یا لاگت لگنے سے کیا بن جاتے ہیں؟ بہتر بن پڑتے ہیں. یہ شریر کو یاد کرنا یہ تو بھوتوں کی یاد ہو گئی. شریر میں دل لگایا وہ یا بھوتوں سے یوگ لگایا؟ اس کا کیا مطلب ہوا؟ جو شریر میں شریر دھاریوں میں دل لگاتے ہیں, جن کا شریر دھاریوں میں یوگ لگنے لگتا ہے, بھوتی کھینچنے لگتی ہے, اس کا مطلب ان کو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بھوت بننا پڑے.
छोड़ना पड़े बुद्धू
सुधर जाए तो सुधर जाए अच्छा है सुधरेगा भूला शाम को घर आ जाए तो अच्छी बात है और न सुधरे भूतों से लागत लग जाती है। हम कहते हैं शिव बाबा को याद करो, ये फिर पांच तत्वों को याद करते हैं। पांच तत्व क्या है? पंचभूत ही तो है। ये पंच महाभूतों को याद करेंगे तो क्या बनेंगे? भूत बनेंगे। तो भूतों को याद करना हो गया ना, देह से बिल्कुल लागत नहीं रहनी चाहिए। ब्राह्मण इसे भी सीखना है या लटकना है? देही अनुमानी बनने में ही मेहनत है। भल बाबा के पास जाए तो बहुत भव्य देते हैं, परंतु बाबा उनके लिखे हुए चार्ट के ऊपर विश्वास
नहीं रखते,
एतबार नहीं करते, खर्चा खर्चा पोता में
नहीं देते,
देते नहीं है। बोल दिया पहले ही, अपना पूरा सच्चा सच्चा पोता मिल देने वाला कोई कोटों में
कोई
एक है, जो अंदर से ये आ जाता है पता नहीं कोई क्या कहेंगे, किसके हाथ में पोता मिल चला जाएगा, बाबा खुद तो पढ़ेंगे नहीं। अरे बाबा तो सागर है, सागर में कचरा कहाँ से आता है? नदियों से आता है, नदियों में सारा कचरा देता है, नदियाँ ले जाके ढो करके कहाँ डालती है? सागर में डालती है। तो तुम अपनी बात देखो, तुम ये क्यों देखते हो कि बाबा पढ़ेंगे कि नहीं? बाबा बन पढ़े नहीं, हमने तो दिया, हमारा दिल तो साफ है, हो गया।
देने की जरूरत नहीं,
लिख दिया फिर देने की जरूरत नहीं,
देने की जरूरत है, लिखते होते
हैं। हाँ, बाबा के पास तो लिखते समय ही पहुँच जाता है, लेकिन लिखने के बाद फिर रख नहीं देना, तो बाबा कहते साकार को कैसे पता चलेगा, इसलिए पोता में लिख करके देना पड़ेगा। देरी हमारी बनने में मेहनत है, बाबा के पास चार्ज बहुत भेज देते हैं, परंतु बाबा एतवार नहीं करते। कोई तो कहते हैं हम तो शिव बाबा से सिलाया और कोई को याद नहीं करते, बाबा समझ जाते हैं ये जरा भी याद नहीं करते। ऐसी याद करना कि कोई की याद ना आए, ये तो बड़ी भारी मेहनत है, कहाँ न कहाँ हंस पड़ते हैं। देहधारी को याद करना, ये पांच भूतों को याद करना है, इनको भूत पूजा कहा जाता है, पूजा नहीं भूत को याद करते। यहाँ तो शिव बाबा को याद करना है, पूजा नहीं करनी, भक्ति का नाम निशान ही गुम कर देना है। भक्ति का नाम निशान गुम करेंगे तो क्या रिजल्ट होगा? कंचन काया बन जाएगी और भक्ति के संस्कार रह जाएंगे तो ये शरीर
छोड़ना पड़ेगा,
छोड़ना पड़ेगा। माने किसी देहधारी से अगर लागत रह गई, लगाव रह गया, तो ये शरीर
छोड़ना पड़ेगा,
छोड़ना पड़ेगा। फिर कहते हैं एडवांस में तो कहा था कंचन काया बनेगी, ये शरीर क्यों छोड़ गया? कोई संस्कार रह गया देवान, भक्ति का कोई ऐसा संस्कार 100% आ गया, इसे शरीर
छोड़ना,
तो भक्ति का नाम निशान गुम हो जाए, वो भक्ति तो दुर्गति है ना। जड़ चीजों को क्या याद करना है? क्या इसको याद करना है? याद ही करना है तो चैतन्य ज्योतिबिंदु आत्माओं को याद करो, आत्माओं के बाप को याद करो, उनकी देह को याद
नहीं
न करो। आत्मा तो अविनाशी, आत्मा के जो शरीर मिलते हैं वो तो सब विनाशी है, वो भी तो मिट्टी के बने हुए हैं ना। बाप कहते हैं वो तो सात गामा में डूब है। आत्मा जो जो शरीर धारण करती है जन्म जन्मांतर, वो सब ड्रामा में डूबा हुआ है। अब फिर तुमको पुजारी से पूज्य बनाता हूँ, किसी के भी शरीर को याद नहीं करना है क्या?
किसी किसी को याद नहीं करना है।
कोई तो ऐसे है दीदी दादी दादाओं के फोटो अपनी जेब में रखते हैं तो इसलिए रखते हैं
याद करने
याद करने लिए रखते हैं। आत्मा पावन बन जाएगी तो फिर शरीर भी पावन मिलेगा। अभी शरीर तो पावन नहीं है, पहले आत्मा सत्व प्रधान बने क्या? पहले कौन सत्व प्रधान बनेगा?
आत्मा
सत्व प्रधान बनेगी, उसकी निशानी क्या होगी?
मनन चिंतन
चलेगा। जो मनन चिंतन चलेगा वो सत संकल्प वाला होगा, ज्ञान युक्त संकल्पों का मनन चिंतन चलेगा क्या? अज्ञान का कोई संकल्प ऐसा नहीं चलेगा जो शिव बाबा की श्रीमत के खिलाफ संकल्प, विकल्प नहीं चलेगा। सत संकल्प चलेगा, विकल्प नहीं चलेगा। तो अभी तुम सतो प्रधान से सतो प्रधान बन रहे हो, अभी तुम्हारा शरीर चेंज होता जाएगा। ये बहुत समझने की बातें हैं, कब चेंज होता जाएगा? अभी तक तो चेंज हुआ नहीं, अभी तो करता जा रहा है। कब चेंज होता जाएगा? हाँ, जब हमारी याद की ऐसी स्टेज बन जाए कि कोई भी देहधारी
याद ना आए,
याद ना आए, तो देहधारी याद नहीं आएगा, तो देहधारियों का संग का रंग भी
नहीं लगेगा,
नहीं लगेगा। देहधारियों का संग का रंग नहीं लगेगा तो एक बाप का संग का रंग
लगेगा।
एक बाप का संग का रंग लगेगा तो क्या होगा?
आत्मा सत्व
प्रधान बने। तो ये बड़ी भारी मेहनत है, कईयों को तो जरा भी याद नहीं रहता है, कुछ लोग कहाँ का कहाँ भटक जाता है, तो फिर नापास हो जाते हैं। जितना बहुतों को आप समान बनावेंगे उतना ही खुद ऊंच पद पावेंगे। क्या बाप समान बनाने की तो बात बाद में, पहले आप समान पुरुषार्थ तो बनाना है। मेहनत बिना यह पद कैसे पावेंगे? बाप कहते हैं पुरुषार्थ करने वाले को फॉलो करो, ये भी पुरुषार्थ ही है ना। ये बड़ा विचित्र ज्ञान है, दुनिया में कोई को पता नहीं है, किसी की भी बुद्धि में नहीं बैठेगा कि आत्मा की चेंज कैसे होती है, आत्मा क्या चीज है किसी की बुद्धि में बैठता ही नहीं। किसी ने कह दिया मुझसे मिसल है, किसी ने कह दिया ज्योति है, बस इससे ज्यादा बढ़कर के कोई कुछ बता ही नहीं सका। ये आत्मा शरीर में कहाँ रहती है किसी को पता ही नहीं था। अब बाप ने आकर के बताया है कि शरीर में सबसे श्रेष्ठ इंद्रियां कौन सी है?
आंखें।
उन आंखों के बीच में आत्मा वृद्धि है, वो आत्मा ज्योति बिंदु है, जो निशानी बिंदी लगाते हैं, टीका लगाते हैं। आत्मा यहाँ टिकी हुई है तब तो टीका लगाते हैं। ऋषियों मुनियों ने ये परंपरा बना दी कि आत्मा की याद रहे, लेकिन बाद में क्या हुआ? टीका लगाना याद रह गया, आत्मा की याद
भूल गई।
भूल गई। तो किसी की बुद्धि में बैठेगा नहीं कि आत्मा क्या चीज होती है। ये सारी गुप्त मेहनत है, बाबा भी गुप्त पूछता है तुम कैसे राजाई प्राप्त करते हो, लड़ाई झगड़ा तुम्हारा कुछ भी नहीं होता क्या? राजाई प्राप्त करने के लिए तुम कोई लड़ाई झगड़ा
नहीं
करते। वो तथाकथित ब्राह्मण भले आकर के लड़ाई झगड़ा करे लेकिन तुम चुपचाप तुम चुपचाप घूमते रहो मुस्कुराते रहो मेरा लड़ाई झगड़ा कुछ भी नहीं है। तुम जानते हो हमारी लड़ाई किसके साथ है? किसके साथ है? हमारी लड़ाई माया के साथ। लड़ाई भी अक्षर कहते हैं है तो ज्ञान और योग की बात। हम कोई से लड़ते नहीं है, ये तो आत्मा को प्योर बनने के लिए मेहनत करनी है। आत्मा जैसे जैसे पतित बनती जाती है तो शरीर भी पतित मिलता जाता है। क्या आत्मा पतित बनेगी तो शरीर पतित मिलेगा? आत्मा अगर पावन बनने लगी, अच्छे संकल्प वाली बनने लगी तो शरीर भी यही इसी दुनिया में सात्विक बनने लगेगा, फिर पावन बनकर के वापस चले जाएंगे। बाबा समझ सकते हैं कौन क्या और कितना पुरुषार्थ करते हैं। किसको कितना पुरुषार्थ करना है और कितना कराना है ये सब बाबा समझ जाते हैं। ये है शिव बाबा का भंडार। शिव बाबा के भंडारे में संघर्ष नहीं करने से फिर उनकी सत्यानाश होते रहते हैं, सरेंडर हो जाते हैं, फिर खाते रहते हैं, काम कुछ भी करते नहीं। बाबा कहते हैं जो सरेंडर है उनको 16 घंटे सेवा करनी चाहिए। कितनी? 16 घंटे सर्विस करनी है। और जो नाम सरेंडर है, घर गृहस्थ में रहते हैं, बाल बच्चों का पोस्ट करते हैं, उनको सिर्फ 8 घंटे सर्विस करते रहे तो नर से नारायण जय जी बोल सकते। तो सरेंडर होने वालों को ज्यादा घाटा पड़ेगा या नाम सरेंडर होने वालों को ज्यादा घाटा पड़ेगा? सरेंडर होने वालों बहुत घाटा पड़ेगा। इसलिए बोला अंदर वाले रह जाएंगे
बाहर वाले
भी रह जाएंगे। पहले भी ऐसे हुआ था, बेसिक नॉलेज में भी ऐसा हुआ था। क्या हुआ था 75 में? क्या हुआ था?
अंदर वाले रहेंगे,
अंदर वाले जो सरेंडर हैंड थे वो सारे ही रह गए। कोई सरेंडर ब्रह्मा कुमारी देखी है? देखने में नहीं आती जिन्होंने एडवांस नॉलेज ली हो। अंदर वाले सारे रह गए और बाहर वाले जो घर गृहस्थ की कीचड़ में रहने वाले थे वो सारे ले गए। लेकिन जो बाहर वाले हैं उनके लिए भी बोला है सर्विस नहीं करते तो सत्यानाश हो जाती है। नहीं समझ रहे? सरेंडर होने वालों की सत्यानाश हो जाती है। ये बात
बाहर
दोनों के लिए लागू होती है। ये सर्विस जरूर करना चाहिए। कितने घंटे?
8 घंटे।
8 घंटे पेट के लिए, 8 घंटे बुद्धरूपी पेट के लिए और 8 घंटे शरीर की परवरिश के लिए।